हेलो।
वाह वाह, सलाम अलैकुम। आपका मिजाज कैसा है हाजी साहब?
आपकी दुआ से जिंदा हूं।
हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए।
आपसे बात करने का बहुत दिल चाह रहा है, काश आप यहां होते।
बातें तो बीवी से कहनी चाहिए। अब ये बताइए, मसला क्या है?
घरेलू मुश्किलात और कैसे बताऊं, किस्सा बड़ा तवील है।
घरेलू मसाइल घर में हल करें, एक साथ बैठकर बात करें, सोचें और देखें कि मुश्किल की जड़ क्या है। मसले को जड़ से खत्म करना चाहिए।
ये चीजें जो आप कह रहे हैं मैं खुद भी जानता हूं हाजी साहब, लेकिन इसे हल कैसे किया जाए ये अल्लाह ही जानता है।
उसका हल सबको अपनी अपनी बात कहने दें। घरेलू मसाइल की जड़ सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी है। अगर उसे ना रोकें तो कीना बन
हाजी
जाता है।
तवसली सही कह रहे थे, जब कीना बीच में आ जाता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। हबीब साहब अपने नए घराने को इकट्ठा करके बात करना चाहते हैं ताकि उन्हें याद आ जाए कि कहाँ क्या किया है, ताकि शायद आगे आने वाले मसाइल को रोक सकें। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब इंसानों के दिल में कीना बैठ जाता है तो इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। मैं चाहता हूं कि जिसके दिल में जो बात है वो बयान कर दे। मैं नहीं चाहता कि किसी तरह का कीना और बुग्ज बाकी रह जाए। मैं ये देखना चाहता हूं कि असल मसला कहां से शुरू हुआ है। जिसकी जो समझ में आता है वो उसे बयान करे।
मेरी राय पूछें तो सब कुछ उस राह से शुरू हुआ जब कुरान चुराया गया। मैं कांप गई थी। वो कुरान लोगों की अमानत था, महल्ले की बरकत था। मुझे पता था कि सख्त दिन आने वाले हैं।
हाजी साहब कहाँ है? हाजी साहब ले गए। 100 बार कहा था कि कुरान को इस तरह सबके सामने नहीं रखना चाहिए।
पुरसुकून रहो सैयद, पुरसुकून रहो। खुदा की किताब को तालों में तो बंद नहीं रखा जा सकता, उसे तमाम लोगों की नजरों के सामने होना चाहिए।
बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। पुलिस को फोन करना
सैयद।
होगा।
फोन करने गए हैं हाजी, हमें क्या खौफ है? जब हमने कुछ किया नहीं है तो हमें क्या जरूरत है
क्या
करने
कह रही
की?
है अम्मी, फोन न करने दे।
खुद हाजी आ गए।
अरे इस मोहल्ले
हाजी आकर जवाब
आपकी जिम्मेदारी है।
वो आम कहाँ चले गया है?
हाजी साहब खुदा के लिए इन लोगों को जवाब दें।
एक मिनट, काम चुराना कोई आसान काम
क्यों नहीं है?
जल्दी जवाब दीजिए। एक मिनट मुझे बोलने तो दें। आप मुझे बोलने तो दें।
जवाब
पहली बात तो ये है कि जो कुछ हुआ इस पर हम सबको अफसोस है, लेकिन अब तो ये काम हो चुका है। हम सब इस मामले की तहकीकात करेंगे, इंशाल्लाह मिल जाएगा।
देखा, एक ना एक दिन तो ये सब होना ही था। जिस मजार के मुतवल्ली ठीक ना होंगे वहाँ यही होगा। आज तक कहीं मजार की मुतवल्ली औरत हुई है? अम्मा जहाँ तक कपड़े सिलने और घर गृहस्थी में लगी रहती, और उनकी बेटी सारा दिन हाजी साहब की लड़की के साथ दिन भर खेलती रहती। ये तो होना ही था। 100 बार मैंने कहा कि एक मर्द को मुतवल्ली बना दिया जाए जिसमें थोड़ी गैरत हो।
हंगामा ना करो, ज्यादा हंगामा ना करो। पहली बात तो ये कि गैरत और मर्दानगी सिर्फ मर्दों में नहीं होती। इस घराने ने अपनी जिंदगी इस मजार के लिए वक्फ कर दी है।
अरे हाजी, हम सबको मालूम है कि आप इस माँ बेटी का क्यों इतना ख्याल रख रहे हैं। मेरा कहना तो ये कि इंसाफ करें हाजी साहब, पूरा मोहल्ला आपकी दोस्ती के लिए क्यों कुर्बान किया जाए है? गलत बात कर रही हूँ क्या?
और उसके बाद हमारी शिकायत। उस वक्त नहीं कहा लेकिन मेरा दिल टूट गया। शर्मिंदा हूँ, अब तक मैं ऐसी जगह नहीं आई थी।
आप क्यों शर्मिंदा हैं? शर्मिंदा तो उन नमक हराम लोगों को होना चाहिए।
क्यों नहीं, मैं अच्छी अमानतदार नहीं थी।
परेशान ना हो,
आज मैं सर्राफ के बेटे के पास जाऊंगा।
तो ये हशमत सर्राफ का बेटा है? आपका बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी।
कहाँ? फातिमा आपका इंतजार कर रही है, तशरीफ लाइए।
मेरा दिल न जाने क्यों घबरा रहा है।
दिल में बुरे ख्याल न लाइए, 8 साल कबल एक वाकया हुआ था और अब ये नौजवान इस जगह आया है, देखना होगा कि वो चाहता क्या है।
रहाना साहिबा, आप लोग ये जगह छोड़कर कहाँ जा रहे हैं?
थक गई हूँ, अब मेरे हाथ में नहीं है कुछ, मेरे कान तेज हैं, लोगों की बातें सुन लेती हूँ।
कोई इतनी जल्दी मैदान छोड़कर जाता है?
खुदा के लिए रेहाना साहिबा, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आप चली जाएंगी तो मैं क्या करूँगी? मेरी अम्मी भी तो गुजर चुकी है।
आप लोग लौट आए, इंशाल्लाह कुरान तलाश कर लेंगे।
उस वक्त मैं कई बार मर चुकी होंगी, मैंने इस मजार में अब तक बड़ी इज्जत की जिंदगी गुजारी, अब मैं ऐसी बातें नहीं सुन सकती। आपको मेरी अम्मी की रूह की कसम, लौट जाए प्लीज।
कोई भी किस्मत से मुत्तला नहीं है। अपने मरहूम शोहर के बाद मुझे सिर्फ फातिमा की खुशबख्ती की फिक्र थी।
आपकी इजाजत है, मैं खुद पे
आप लोगों की खूबी में कोई शक नहीं था, लेकिन अगर मैं यहाँ आई तो सिर्फ बच्चों के लिए।
क्या आप इस बात की इजाजत देती हैं?
फातिमा और सारा को जितनी ज्यादा खुशी थी उसकी वजह से मुझसे इनकार न किया गया।
महर यानी एक जिल्द कुरान मजीद, मिस्री की एक डली और 44वें सेक्टर में मछली के प्लांट के एक तिजारती यूनिट के 12वें हिस्से की मिल्कियत के एवज पढ़ दूं, क्या इन बातों के मद्देनजर आप मुझे अपना वकील बनाती हैं?
हाँ जी सर।
परेशान ना हो, मैंने हर चीज के बारे में सोच रखा है।
मैं आपका वकील हूँ। क्या मैं आपका वकील हूँ?
जी हाँ, वहां कहा था, यहां भी कह रही हूं। मछली का प्लांट आपका और सारा का है, मुझे माले दुनिया से कुछ नहीं चाहिए सिवाय फातिमा की खुशबख्ती के।
ओह, फिर बिजली चली गई।
परेशान ना हो हाजी साहब, पता नहीं क्यों हमारी शादी अब तक कामयाब नहीं हो सकी है।
इसे ले जाइए, इसे थाने ले जाइए ताकि इसे पता चल जाए जो कुछ हुआ इसका आधा ऐसा इसकी वजह से है, इसकी वजह से है। इसके जाहिर को ना देखें, पकड़ ले इसे। इसकी कंप्लेन की है मैंने, इसकी बेटी ने मेरे भाई को कत्ल किया है।
थाने से आए लड़कियों को ले जाने के लिए।
आखिर किस जुर्म में?
परिचय ने शिकायत की है कि बेजात की मौत के जिम्मेदार सारा और फातिमा है।
लड़कियों से उसका क्या ताल्लुक?
पता नहीं, परेशान ना हो, जाओ तैयार हो जाओ, जाओ।
बखुदा सारा मेरे लिए बिल्कुल फातिमा जैसी है। मैंने हमेशा कोशिश की कि वो ये समझे, लेकिन पता नहीं क्यों वो हमें अपना नहीं समझती।
48
कोट का साइज 120। सारा बेटी, तुम्हारा खाना चूल्हे पर है। सारा, कोई बात हो गई है?
आप तो बेहतर जानती हैं।
क्या चीज?
ابو نے اپنی پراپرٹی نیلامی کے لیے رکھی ہے, مچھلی کا پلاٹ قبرستان بن گیا ہے. کہیں ابھی بھی نہ کہیں کہ مجھے پتا
نہیں. تو نہیں, لیکن پریشان مت ہو, خدا بڑا ہے.
مجھے تکلیف تو یہی ہے کہ تم سب کو سب چیز کا پتا ہے اور اس کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پائی. بیچارے میرے ابو, ہماری غلطیوں کا خمیازہ اپنا سب کچھ اٹھا کر بھگتنا ہوگا انہیں.
سارا ہم بھی تمہاری طرح غمگین ہیں, لیکن ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا. ابو اپنے کاموں کے بارے میں خود بہتر سمجھتے ہیں.
اب تک مجھ سے کچھ نہیں چھپاتے تھے, لیکن تم لوگوں کی برکت سے.
سارا بیٹی, مجھے خود بھی ابھی پتا چلا ہے.
ریحانہ معاف کرنا, غلط وقت پہ آ گئی, دوبارہ آؤں گی.
اب کچھ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جو بھی تھا وہ یہی تھا, بد نصیبی, نحوست, سب کچھ قرآن مجید کے چلے جانے کے بعد ہوا. میری غلطی ہے, مجھے زیادہ خیال رکھنا چاہیے تھا. امانت میرے لیے غیر اہم ہو گئی تھی. اس وقت سمجھ میں آیا جب میرے ہاتھ سے سب نکل چکا تھا.
تو یقیناً اس میں کوئی حکمت ہوگی. انشاءاللہ جتنے بھی دروازے بند ہیں کھل جائیں گے.
کیا ہوا؟ کھڑکیاں تو بند ہیں, کیوں بجھ گئی؟
شاید میری سانس کی وجہ سے بجھ گئی, یا اس کی بتی خراب ہو گئی. فاطمہ بیٹی, تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کیا کہتی ہو؟
ابو جان, میرے خیال سے سارا ماجرا توسلی صاحب کے سفر سے شروع ہوا ہے.
آپ تو شام کے وقت جانے والے تھے.
نہیں, سوچا نماز صبح کے بعد نکل جاؤں.
ٹھیک ہے,
شکریہ, سلامت
رکھیں. بہت شکریہ, معاف کیجیے گا.
خدا آپ پر اپنی برکتیں نازل کرے اور آپ کو کامیابی.
خدا حافظ. سید,
فون کر لے دینے. حاجی, ہمیں کیا خوف ہے؟ جب ہم نے کچھ کیا نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی؟
امی, فون نہ کرنے دے.
حاجی, توسلی کے بعد یہاں کا ذمہ دار میں ہوں. میں بالکل نہیں چاہتا کہ پولیس مزار میں داخل ہو. سید, فون نہ کریں.
غلطی ہماری تھی, کچھ دنوں کا موقع دے, انشاءاللہ بہت جلد قرآن.
اچھا, خود ہی اڑا لیا اور آپ خود ہی واپس رکھ دیں گی؟ سب کچھ ختم ہو گیا, لے گئے قرآن, چوری ہو گیا, دین و ایمان لے گئے, اب اسے کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے, سب ختم.
پریچے صحیح کہہ رہی تھی, جب سے قرآن چوری ہوا ایک دوسرے پہ الزام لگایا, شک کیا ہم نے, غلطیاں کی ہم نے.
نظر والی راجو لڑکا کھانا لایا تھا, وہ یاد ہے؟ وہی اسمارٹ.
ہاں تو
میسج دیا ہے کہ مزار کے چور کو جانتے ہیں.
کون ہے؟
کون ہے معلوم نہیں, رابطہ کرے گا.
پتا نہیں, جسے میں جانتی نہیں اس پر بھروسہ کرنے کے لیے کیسے تیار ہو گئی. مجھے اور سارا کو ان لوگوں کی باتوں کے چکر میں نہیں آنا چاہیے تھا. اس کا چہرہ مجھے جانا پہچانا لگ رہا ہے.
مجھے بھی. اصل اس کا چہرہ بڑا کامن سا ہے, ایسی شکل کے بہت ہوتے ہیں,
لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اسے پہچانتی ہوں.
اس رات میں یہاں آ رہا تھا, انٹیریئر ڈیکوریشن کے لیے کچھ سامان خریدا تھا. جس سڑک سے میں ہمیشہ آیا کرتا تھا اسے بند کیا تھا, اب بھی بند ہے, آپ نے دیکھا ہے, پائپ لائن بچھا رہے ہیں.
ذرا جلدی بتائیے نا.
مجھے مزار کے آگے والی گلی سے آنا پڑا. مزار کے سامنے ایک سفید رنگ کی گاڑی کھڑی تھی, سانولے چہرے والے ایک نوجوان شخص.
سانولا؟
دبلا تھا,
ماڈلوں جیسا نہیں, ڈھانچا تھا. گاڑی کا انجن کھول کے بظاہر کام کر رہا.
گاڑی میں کوئی عورت نہیں تھی؟
مجھے یاد نہیں ہے, لیکن جو چیز याद है वो ये कि एक पुराना गाना चल रहा था।
हेलो अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चोरी बहजात का काम था, अब गवाह भी है।
जरा तवज्जो से
एक्सेलेरेटर दबाइए, इस गाड़ी को जितना भगाएंगे उतनी तेज चलेगी।
क्यों तेज चलाए, हम लोगों को कुछ हो सकता है।
तेज,
धीरे धीरे चलाओ सारा।
फातिमा खामोश रहो, ब्रेक मेरे पैर के नीचे है।
सारा सारा धीरे,
तेज चलाइए, तेज चलाइए,
जरा धीरे, सारा धीरे।
हाँ पकड़ लिया,
ध्यान से चलो।
आइए हाजी साहब।
या अल्लाह,
आइए हाजी साहब,
आइए।
अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह, या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
सलाम वालेकुम, तशरीफ लाइए।
सलाम वालेकुम।
या अल्लाह, तशरीफ लाइए।
فاتحہ مع الصلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
امی حاجی صاحب ان کے گھر والے یہاں ہیں
یہاں सफेद कपड़े पहन लेते दामाद साहब, मुबारक हो। तुम्हारी इकलौती बेटी ने मेरे बंदे से भाई को भरी जवानी में कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया और अब तुम अपने ख्याल में बहुत अकड़ अकड़ के चल रहे हो, मुबारक हो।
हम दर्द में शरीक होने आए हैं।
दर्द? मेरा दर्द तो आप है हाजी, अगर आप ना हो तो मेरा कोई दर्द ही नहीं है। अरे लोगों में किससे कहूँ कि मेरा दर्द, तो ये लोग हैं, इन लोगों ने मुझे दर्द दिया।
साहिबा आराम से, खुदा भला करेगा।
खुदा, खुदा को हमसे क्या मतलब?
क्या कह रही हो तुम भी, खुदा उनका तो नहीं हमारा है।
किसने कहा खुदा, तो इन्हीं लोगों का है, इनका जिनकी हैसियत है, दौलत है, इन्हीं का जिन्हें आप देख रहे हैं, सूदखोर मेरी जिंदगी का सारा असबाब लिए जा रहे हैं। खुदा इस शैतान की खाला क्या है जो बातें इधर की उधर करती है और मेरे पेट पर लात मारती है, चोर।
ये तुम क्या कह रही हो, इस तरह की बातों से मरहूम को दुख मत पहुंचाओ।
मैं अपना दर्द किससे बयान करूं, किसे कहूं अपना दर्द है। मैंने उसके लिए एक लड़की भी देखी थी और शादी भी करना चाहती थी, इन लोगों ने कब्रिस्तान पहुंचा दिया। तुम तो जानती हो ना नाहिद बहन, बेजा सिर्फ मेरा भाई नहीं, बेटा भी था, मैंने उसकी परवरिश की थी। अब जब वो मेरा सहारा बनने के लायक हुआ तो इन्होंने कब्रिस्तान भेज दिया। याद है ना नाहिद, इन्होंने किस किस तरह से मुझे सताया है, बेजात का दाग भी इजाफा कर दिया। बखुदा बेजात जो भी था, जैसा भी था, कुरान का चोर नहीं था, कुरान का चोर नहीं था। इन लोगों ने उस पर तोहमत लगाई है, बेईमान कहीं के, इसे कत्ल भी किया और इसकी बेइज्जती भी की।
मेरे ख्याल में वो एक अलामत थी, ऐसी अलामत जिसने हमें लोगों की नजरों और सख्त बातों से निजात दिलाई। ये क्या है?
अरे ये तो कुरान का गिलाफ में लगा था, मरहूम रजा के हाथ का बना हुआ है।
Thank you.
امی
ہاں میرے بیٹے میں ابھی لوٹ آؤں گی
امی
ایک منٹ جاؤ تو نائی صاحبا کے گھر جاؤ نائی بہن کے گھر آرش کے ساتھ کھیلو میں ابھی لوٹ آؤں گی جاؤ میرے بچے ارے میڈم تم نے تو میرا ہاتھ ایک منٹ رکو تو میری ماں دیکھ رہی ہے بچہ میرے پیچھے رو رہا ہے رک جاؤ جاؤ بیٹے جاؤ بیٹے ہر جگہ ان کی پہچان ہے ہر جگہ ان کا رسوخ ہے ان کے تعلقات ہیں قتل یہ کرتے ہیں اور پولیس آ کر ہمیں پکڑتی ہے ٹھیک ہے حاجی بھلا نہیں ہوگا تمہارا بھلا نہیں ہوگا تمہارا جاؤ بیٹا نائت بہن کے گھر جاؤ میں ابھی آ رہی ہوں ٹھیک ہے حاجی
کاش پتا چل جاتا کہ قرآن کا چور کون ہے
اٹھو میرے بیٹے اٹھو
کاش قرآن مل جاتا کاش کبھی کبھی اسے خواب میں دیکھتی ہوں لمبے خونی لباس میں قہقہے لگاتے ہوئے خدا کرے کہ بہزاد نے ہمیں معاف کر دیا ہو
اس میں تمہاری تو کوئی غلطی نہیں تھی خدا خود معاف کرنے والا ہے
لیکن ہر چیز کو نہیں
ڈرو نہیں کچھ نہیں ہوا
کیا ہوا ابو وہ کیا ہے
کیا
بلی ہے
نہیں الو ہے
جو بھی ہے ڈرو نہیں چلو اندر چلیں
خدا معاف کرے گا لیکن ہر چیز کو نہیں میرے خیال میں پورا معاملہ امتحان سے شروع ہوا جب فاطمہ پاس ہو گئی اور میں نہیں
امی امی میں پاس ہو گئی
مبارک
اسی سبجیکٹ میں جاجرود میں پڑھنا ہوگا جا کر
جاجرود
جاجرود یہی قریب ہی ہے
اور تمہارا کیا ہوا
اب کیا بتاؤں میں نے بتانے لائق کام نہیں کیا میرے پیارے ابو
ہاں
آپ میرا کام کب کریں گے
کون سا کام
ابو یقین کریں اب اس سے کام کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے
اگر کلاس انگریزی یا اس طرح کے کام ہیں تو یہ ٹھیک ہے لیکن دوسرے کام کے لیے ٹھیک نہیں ہے
بس یہی اپنی بات کہہ
ہاں
اچھا کچھ مدد کر دیں
میں فضول خرچ لڑکی کو پیسے دینے سے رہا
ہاں میں کمپٹیشن میں جو پاس نہیں ہوئی
دیکھو سارا میں نے تمہیں اور فاطمہ دونوں کو کوچنگ ایک ساتھ بھیجا وہ پاس ہو گئی اور تم
نہیں نہیں ہر بار نہیں ہمیشہ آپ نے میری مخالفت کی صرف یہی چاہ کہ میں وہ بنوں جو آپ چاہتے ہیں
میں چاہتا ہوں کہ تم وہی لڑکی بنو جو میں نے اپنے اکیلے پن کے پرسوں میں کھو دی وہی اچھی لڑکی
میرے اچھے اور آپ کے اچھے میں فرق ہے میں نے مدد کرنی چاہی تھی میں ہر چیز خراب نہیں کرنا چاہتی تھی یہ وہ ذمہ داری تھی جو میں نے خود قبول کی تھی اور میں ہی اسے ٹھیک کرتی مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایکسیڈنٹ سب کچھ برباد کر دے گا فرناز نے فون پر بتایا کہ وہ ترکی سے ایسی چیزیں لائی ہے کہ کیا کہوں خوبصورت سستی اس بار ہمیں جلدی چلنا چاہیے
یہ بک کیسی ہے
मैं 10 मिनट बाद साला लेकर आती हूँ, किसी को पता ना चलने पाए। अभी आई।
ठीक तो है, कुछ हुआ तो नहीं? जरा अपना सर तो ऊपर कीजिए, देखो सर में तो कुछ नहीं हुआ। हाँ ठीक है, आप उतर सकती हैं।
जो मुझ पर इतना भरोसा करते थे मामूली बातों पर टोकने लगे। मुझ पर से उनका एतमाद खत्म होता जा रहा था। रफ्ता रफ्ता वो अपनी बेटी को भूलते जा रहे थे।
मोहतरमा साहेबा, रेहाना अमानी साहेबा, क्या आप इस बात की इजाजत देती हैं कि आपका अक्द हाजी हबीब तहरानी से मुअय्यना मेहर यानी एक जिल्द कुरान मजीद, मिस्री की एक डली और 44वें सेक्टर में मछली के प्लांट के एक तजारती यूनिट के 12वें हिस्से की मिलकियत के एवज।
मैं खुद चाहती थी कि रियाना साहिबा फातिमा हमारे साथ आकर रहें, लेकिन उनके आने के बाद कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि जब कोई चीज जानकर मुझे ताजुब ना हो। हर बात तब मुझे पता चलती थी जब सब जान चुके होते थे और फिर कुछ नहीं हो सकता था।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम, फरमाइए।
मैं कंप्यूटर ठीक करने आया हूँ।
अबू ने आपसे कहा है?
तुम्हारी अकल कहाँ गई है? क्यों एक अजनबी शख्स को घर के अंदर बुला रही है?
खुद आया है, मैं तो इसे नहीं लाई, और फिर वो अजनबी नहीं है, मदद करने के लिए आया है, इसके लिए उसका शुक्रिया। मैं उसे शादी तो नहीं कर रही।
बात सुनो, अगर वो अंदर आया तो अबू से कह दूंगी।
मैं इस घर में अकेली तो नहीं हूँ, तुम जैसा सख्ती करने वाला बॉडीगार्ड भी मेरे साथ है, और देखो इस तरह की हरकतों से अबू का दिल नहीं जीत सकती। हाँ
सारा जल्दी करो, हमें मछली के प्लांट जाना है, लगता है कुछ हुआ है। सुना ना कि कर्जखा दरवाजे पर आया था।
खर्सखाहों का जवाब हमें तो नहीं देना चाहिए, अबू आका खुद ही ठीक कर देंगे। ऐसा मुझे खरीदारी के लिए जाना
लगता है। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, समझ रही हो क्या कह रही हो? इसके साथ बाहर निकल कहाँ जाओगी?
डियर फातिमा, मैं बच्ची नहीं हूँ, जानती हूँ क्या कर रही हूँ। एक कंप्यूटर लेना है, सफर पर तो नहीं जा रही?
नहीं, हम साथ चलेंगे।
आप भी हमारे साथ चलेंगी?
मैं सिर्फ दरवाजे तक आके पसाऊंगी, फिर मछली प्लांट चलेंगे। चलिए।
तुम सोच रही हो कि सब मेरा बहुत ख्याल रख रही हो?
इंशाल्लाह तुम इससे कहीं बेहतर बनो कि तुम्हारा ख्याल रखना पड़े।
अबू जान की बारी है।
भाई मैं बहुत मसरूफ था, लेकिन तुम लोगों के लिए एक चीज है जो बहुत कीमती है।
क्या है?
ये गोशवारे लैला की यादगार है, एक तुम्हारा और एक सारा का है। ये इस बात का सबब बनेगा कि कभी एक दूसरे को अकेला ना छोड़ो। सालगिरह मुबारक हो।
शुक्रिया।
इसकी मिसाल आज सुबह की है, जब तुमने अपने आप को अब्बू की नजर में अच्छा बनाने के लिए मेरी इमेज खराब की। क्यों, क्या दो बहनों को एक दूसरे का राजदार नहीं होना चाहिए? इसके अलावा इस रात हमने पहाड़ पर कौन सा बुरा काम किया था?
मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं अबू से कोई बात नहीं छुपाना चाहती, लेकिन मैं तुम्हारी इमेज बिल्कुल नहीं खराब करना चाहती।
मेरी बेटी, हम सब एक फैमिली हैं,
اگر ہم میں سے کوئی ایک تمہاری کمی بتائے تو یہ اس سے تو بہتر ہے کہ کوئی دوسرا تمہیں بتائے، ہے نا؟
سارا بیٹی، میں اور فاطمہ تمہارے ساتھ رہنے آئے ہیں، تمہیں تمہارے ابو سے دور کرنے نہیں. مہر اور اس طرح کی باتیں تو بس بہانہ ہے. مجھے اپنے لیے ایک سہارے کی ضرورت تھی اور فاطمہ کے لیے کسی سرپرست کی. اب میں خدا سے ایک اور چیز چاہتی ہوں اور وہ ہے تمہارا اچھا نصیب، میری پیاری بیٹی. پلیز آپ مجھے معاف کر دیں.
وہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا کے مسائل کو حل کر دیا. آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں ایک خالی کرسی ہوتی ہے، وہ میری جگہ ہے شیطان کی. میں فاطمہ جیسی ایک بڑی ہی مذہبی لڑکی کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہوں، سارا جیسی ایک ذہین لیکن سادہ لڑکی کی شکل بھی، ایک بوڑھے مرد یا بوڑھی عورت، بلکہ نیما جیسے جوان کی شکل میں بھی. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میرا ظاہر آپ پر منکشف ہو گیا ہے، ہے نا؟ اور ہاں، آپ کیا سوچتے ہیں اس فیملی کے مسائل کی اصل وجہ کیا ہے؟